आज का पहला प्रश्न है कि हम यंगस्टर्स अपनी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस डिसाइड करते हैं और कुछ देर तक अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड भी रहते हैं, इंस्पायर्ड भी रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हमारा इंस्पिरेशन कुछ कम हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि हम अपना मंजिल खो चुके, भूल गए और हमारी खुशियां भी कमजोर हो जाती है। तो हमें हर समय मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात कि पर्पस है तो खोएगा नहीं, खो जाता है तो वो पर्पस नहीं। जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक ऐसा लगता है चीजें खो गई है। एक बार क्लैरिटी हो जाती है उसके बाद में कुछ खोता नहीं। एक गुरुदेव हुए हैं, आचार्य सम्राट विजय शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब। उन्होंने एक बार एक बात, बहुत प्यारी बात जो मुझे लगी उनके वचनों में, वो यह है कि एक लड़के की एक बार एक लड़की से शादी होती है तो जिंदगी में एक बार होती है, दो बार होती है, कितनी बार होती है? जनरली एक ही बार होती है ना, एक ही बार शादी होती है। एक ही बार शादी होती है और शादी होने के अगले दिन कभी उनको याद दिलाना पड़ता है ये तुम्हारा पति है, ये पत्नी है, ये सासू है, ये ससुर है? नहीं ना। अरे एक बार संबंध बना और ता उम्र के लिए आपको कभी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये पति है या पत्नी है या सास ससुर है या कोई भी एक्सवाइजेड है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आदमी संबंध स्थापित करता है वहां विस्मृति नहीं होती। जहां वाकई वो संबंध ही नहीं बना है तो विस्मृति हो जाती है, तो आदमी भूल सकता है। ये हुई बात आदमी के जहन में किस चीज को कहां तक ले जाने की क्षमता होती है, हम कौन सी बात को कहां तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम गुरु के पास जाते हैं, वहां उपदेश सुनते हैं या कोई भी अच्छी बात सुनते हैं, वो हमें कितनी देर याद रहती? कितनी देर? 4 दिन 6 दिन 8 दिन है ना, फिर वापस सब कुछ खो जाता है। तो कारण क्या है? खोजना पड़ेगा ना। आप में से किसी ने वो मुगले आजम मूवी देखी होगी? देखी, शोले भी देखी होगी, देखी है? और मैंने प्यार किया भी देखी होगी। हाँ, स्टोरी याद है? डायलॉग्स भी याद होंगे है ना। और जो फेवरेट एक्टर होता है उसकी तो मूवीज की सारी सारी डायलॉग्स, बहुत कुछ गाने वाने सब कुछ एक बार में याद हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब बातें याद नहीं होती। तो कारण क्या है? खोजो ना। कारण है, क्या होता है कि हमारा चित्त कुछ घटनाओं के साथ तो बहुत जल्दी एसोसिएट हो जाता है, उसको अपना मानता है, अपने लिए जरूरी मानता है, उसमें अपना रस बना लेता है और बाकी बहुत सारी बातें हैं वो उसको अपनी लगती नहीं। जैसे प्रवचन, वो अपने ही नहीं लगते ना, क्योंकि वो हमारी जरूरत के नहीं होते। अक्सर हमारी प्यास के बिना पानी मिलता है, भूख के बिना भोजन मिलता है, तो उसकी वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस बन ही नहीं पाती। ये बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए आदमी उसी चीज को भूलेगा जो चीज उसका अपने अंदर से रिलेट नहीं हुई, अभी उसकी जरूरत नहीं बनी है। जो जरूरत बन जाती है वो भूल नहीं सकते। अगर भीतर में क्वेश्चन है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, अगर वाकई तुम्हारा क्वेश्चन है तो भूलोगे नहीं। तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुन करके मन में एक पैदा हुआ विचार और थोड़ी देर के बाद वो विचार खो गया, इट इज पॉसिबल। किसी और ने आपके दिमाग में डाला है ये विचार कि पर्पस क्या है, और हकीकत है कि लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर इस लाइफ को लेते वक्त हम इतने कॉन्शियस होते कि हम सोच समझ करके अपना शरीर बना रहे होते, मम्मी पापा चुन रहे होते, तो हम पर्पस भी सोचते। जैसे तुम स्टडी के अंदर कॉन्शियसली सेलेक्ट करते हो सब्जेक्ट को कि मुझे क्या बनना है, मुझे जो बनना है मैं वैसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, तो वहां पर्पस है। पर जीवन को चुना, तब क्या वाकई कॉन्शियस थे क्या? थे क्या कि मैं ह्यूमन बॉडी चुनू, नेक्स्ट बर्थ के लिए मैं कौन सा बॉडी चुनू, उसके लिए अभी से कोई डिजाइनिंग है क्या माइंड में? नहीं है ना। वी आर नॉट सो कॉन्शियस फॉर दिस लाइफ, इसीलिए हम इस लाइफ का कोई गोल, कोई पर्पस अंदरूनी तौर पे बना नहीं पाते। ये ऊपरी बातें होती है, जो ऊपर से आती है वो थोड़े दिनों बाद में असर नहीं करती, चली जाती है। जो भीतर से आती है वो साथ रहती है ना। अब भीतर से क्यों नहीं आई बात, पहले देखो, क्योंकि सवाल उठा कहां से है। जहां से सवाल उठेगा वहां तक जाना पड़ेगा। अगर सवाल के साथ जवाब की वास्तविक यात्रा करनी है तो जहां से सवाल उठा है वहां तक जाओ। अगर समस्या का समाधान वास्तविक खोजना है तो जहां समस्या पैदा हुई उस जगह तक जाओ, तो पता लगेगा कि समस्या भी वास्तविक है कि नहीं है। खोजने में पता लगता है। और जब एक बार ये पता लग जाता है कि समस्या ही वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, तो उसके जवाब भी काल्पनिक ही होते हैं। एग्जैक्टली। और हमारी जिंदगी की 99% समस्याएं जो है ना, एक्चुअली समस्या वो होती नहीं है, वो बनाई गई होती है। वो दूसरों को देख देख करके हमने बना ली होती है। जैसे मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, ये सब दूसरों को देख के हमने बनाई है। मैं कम सुंदर दिखता हूं, मैं कम स्मार्ट हूं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, जैसे जो इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना हमारे, ये सारे दूसरों को तुलना की वजह से पैदा हुए हैं, है ना। वरना ये समस्या कुछ है ही नहीं जिंदगी के अंदर में। वृक्षों को कोई समस्या नहीं है, पक्षियों को कोई समस्या नहीं है, आदमियों को बड़ी समस्या है, क्योंकि बैठे साले करे क्या, तो समस्या ही पैदा करते, दुखी पैदा कर लेते। तो एक्चुअली जिंदगी का पर्पस क्या है, ये सवाल उठा कहां से, पहले ये देखो। अगर सवाल आध्यात्मिक स्तर पर उठाए, मतलब भीतर से उठाए, आत्मा की प्यास से उठाए, कोई इंद्र की समझ से उठाए, तो तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी का सत्य क्या है, या इसका मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं इस शरीर में आया क्यों। अगर ये सवाल वहां उठाए तो आंसर अलग होगा। अगर ये सवाल ऐसे उठाए कि सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, सारे लोग बहुत अच्छी डिग्रीज पा रहे हैं, सारे लोग बड़े बंगले बना रहे हैं, तो मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, तो आप देखोगे कि बहुत लोग बंगले बना चुके हैं, आपके लिए तो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि आप पैदा हुए से पहले मम्मी पापा ने बना रखा था, और शादी करोगे उसके पहले आपके ससुराल वालों ने बना रखा होगा, वो देख के शादी करने वाले हो, तो बंगला बनाना तो पर्पस नहीं हो सकता है। पैसा कमाना वो कोई बड़ा गोल नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसा कमाई लोग उसके बाद क्या, फिर क्या मर जाएंगे क्या, गोल पूरा हो गया तो, हाँ ऐसा तो नहीं है। और डिग्री हासिल करना वो तो बाय डिफॉल्ट कर ही लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी डिग्री हासिल करना, कुछ तो भी करोगे ना खाली टाइम में, तो पढ़ लिख लोगे, और जब पढ़ोगे तो कोई कोई डिग्री तो मिल ही जाएगी, तो ये पर्पस तो नहीं हो सकता। पर्पस क्या है जिंदगी का, व्हाट इज गोल? ये क्वेश्चन ही कहां से आया, आप में से किस किस के अंदर आया ये क्वेश्चन, हाथ खड़ा करके बताओ इजीली आया, और बाकी लोगों के अंदर नहीं आया ना? कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आया तो आपने क्या खोजा, कुछ आंसर क्या मिला आंसर? मेटीरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में आया कि पैसे कमाना है, डिग्री लेनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चों की अच्छी स्टडी करानी है ना, देन सब कुछ जो सारी दुनिया कर रही है, ठीक है। और क्या कोई आंसर है आपके मन? वही आंसर आया, सेम आंसर आया ना, क्योंकि हम लोग एक लगभग वो सेम डिब्बा में जर्नी कर रहे हैं, तो सेम सोच की आदत है हमारे पास में, वैसे थॉट पैटर्न है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। सोचो जरा, अब एक आदमी अगर कोई लंबा सफर कर रहा है ट्रेन के अंदर, जहां उसको 48 घंटे ट्रेन में बैठना होगा या उससे ज्यादा घंटे बैठना होगा, तो जो ट्रेन में सफर करता है तो खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, साथ में बैठे हुए लोगों से बातें भी करेगा, एंटरटेनमेंट भी करेगा, है ना, सब कुछ करेगा। लेकिन उससे पूछा जाए कि क्या तुम खाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ट्रेन में बैठे हो क्या, कहेगा नहीं, इस ट्रेन को जहां जाना है, मतलब मेरा डेस्टिनेशन जहां है, मैं वहां जाने के लिए इस ट्रेन में बैठा हूँ, ओके ना। ऐसे हम इस लाइफ के अंदर जो है, अभी ह्यूमन बॉडी में जो हम जो है, हम इस ह्यूमन बॉडी में रहते हुए, हम अगर शादी करें, पैसा कमाएं, डिग्री प्राप्त करें, नेम फेम सब कुछ प्राप्त करें। ये सब कुछ ऐसा ही है जैसे कि ट्रेन में बैठे हुए डब्बे में हम कुछ तो करेंगे ना, टाइम पास करेंगे, तो वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डेस्टिनेशन ये सब कुछ नहीं है। शरीर हमारे साथ है, वाहन है हमारा, तो इसकी पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। मन वाहन है, इसकी भी पूर्ति करनी होगी। वचन भी वाहन है, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। ये मन, वचन और तन, ये तीनों जो चीजें हैं ना, ये सब हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस जिंदगी का लक्ष्य केवल इन चीजों की यानी इन तीनों साधनों को हर वक्त ईंधन देना इतना ही नहीं है। ये साधन किस लिए है अगर खोजो अपने भीतर से, तो समझ में आएगा कि ये साधन इस बात के लिए है कि आप अपने अस्तित्व को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सको। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, डू यू नो? एक्चुअल फॉर्म क्या है? हाँ, एग्जिस्टेंस मीन्स आत्मा है ना। इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है? अस्तित्व यानी आत्मा, और हम यानी आत्मा है ना, हम आत्मा ही है। तो हमारा एक्चुअल फॉर्म क्या है पता है? नहीं ना। जैसे एक बच्चा अगर बच्चा ही रह जाए और बड़ा ना हो तो बाकी सारे लोग क्या कहेंगे? नहीं, वो बड़ा, उम्र बड़ी हो गई लेकिन वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? हैंडीकैप्ड है, अबनॉर्मल चाइल्ड है ना। मतलब वो बच्चा जिसको बड़ा हो जाना चाहिए था वो बड़ा हुआ ही नहीं, और बच्चे अवस्था में पैदा हुआ, बच्चे अवस्था में रहा और बच्चे अवस्था में मर गया, तो हम कहेंगे कि उसने अपनी सही जिंदगी नहीं जी, नहीं जी ना। ऐसे हम सारे लोग हैं, ऐसे हम सारे लोग हैं कि हम लोग बच्चे के रूप में पैदा हुए, मतलब मानसिकता के स्तर पर, समझ के स्तर पर, समझदारी के स्तर पर हम लोग बच्चे के रूप में पैदा हुए, और हम लोग बच्चे के रूप में ही पूरी जिंदगी जीते और बच्चे के रूप में ही मर जाते। एक्चुअल जो हमारा फॉर्म है ना, जिसमें हमें आना चाहिए था, वो हम आ ही नहीं पाते। वो एक्चुअल फॉर्म क्या है वो नहीं पता। मैं शब्दों में कह देती हूँ, बट शब्दों में कहने से मिल जाएगा ऐसा मत समझना। शब्दों में कहने से एक्चुअल फॉर्म नहीं प्रकट होगा, लेकिन जान लो फिर भी, ताकि किसी दिन तो पता रहेगा कि मेरा एक्चुअल लक्ष्य क्या है जिंदगी का, पर्पस क्या है लाइफ का, है ना। हम सब लोग जो ये दिख रहा है ना बॉडी फॉर्म, हम केवल उतने ही नहीं है, हम केवल उतने ही नहीं है। तो हम क्या है? समुद्र के पास कभी बैठे ना, बैठे थे ना हम सब लोग, कभी ना कभी तो सागर के पास गए हैं ना, बीच पर बैठे होंगे। तो हमने देखा होगा कि समुद्र के अंदर पानी की लहरें उठती है, गिरती है, पानी के ऊपर कभी कभी इतना झाग बन जाता है, और बहुत सारे बुलबुले पैदा होते हैं ना, और वो बुलबुले पैदा होते हैं फिर फना हो जाते हैं, फिर पैदा होते हैं फिर फना हो जाते हैं। अगर कोई बुलबुला पैदा हुआ, फना हो गया, दोबारा बुलबुला नहीं बना, तो वो क्या हुआ? एग्जिस्टेंस खत्म हो गया या कुछ और हो गया, क्या हुआ? आप कह रहे एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बुलबुले का बुलबुले के रूप में एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन अब बुलबुला क्या हो गया? एग्जैक्टली पानी हो गया ना। और वो पानी यानी सागर एक ही है या अलग अलग है? एक ही सागर यानी पानी, पानी यानी सागर, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही हमारा जो एग्जिस्टेंस है भी बुलबुले की तरह है ना। वी आर जस्ट लाइक बुदबुदा। क्या है ये बुदबुदा? हवा और पानी का संयोग है ना। पानी समझ लो अस्तित्व उसका, और हवा समझ लो उसके बाहर से आई है। जब हवा आ गई है तो वो फूल गया है थोड़ा, है ना। तो अभी हम सब लोग फूल गए हैं, अहंकार की हवा आ गई, क्रोध मान माया लोभ की हवा आ गई, या अज्ञान की अवस्था आ गई, तो हम सब लोग एक इंडिविजुअल बन गए, एक पर्सन बन गए। और एक्चुअली हमारा जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम पूरा अस्तित्व है, पूरा सागर है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा लोक है, पूरा यूनिवर्स है। तो हमारा असली पर्पस क्या है जिंदगी का, कि अपनी जीवन को, अपने जीवन को व्यक्ति रूप में नहीं जीना, समष्टि हो जाना, पूरा अस्तित्व हो जाना। वो पूरा अस्तित्व जो अनुभव कर लेता है, अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को जो अनुभव कर लेता है, उसको हम अरहंत और सिद्ध कहते हैं। व्हाट इज अरहंत? वो भी एक व्यक्ति थे, जैसे महावीर स्वामी जी थे, श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, कोई भी नाम ले लो, ठीक है ना। ये सब क्या थे? एक व्यक्ति थे। लेकिन ये व्यक्ति को क्यों भगवान कहते हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? ये भगवान क्यों कहलाए। ऐसा थोड़ी था कि वो कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन थे, कोई हमारे जैसे खाते थे पीते थे चलते थे। उन्होंने भी शादी की, उन्होंने बच्चे किए, उन्होंने भी युद्ध लड़े जिंदगी के अंदर। 2400 भगवान में से कई सारे भगवान ऐसे जिन्होंने जिंदगी में युद्ध लड़े, तो सब कुछ खा लिया, उन्होंने भी तो किया जिंदगी के अंदर, फिर भी वो भगवान कहलाए। राम को देखो, रामायण बनी, युद्ध किया। कृष्ण को देखो, युद्ध किया। पांचों पांडव युद्ध किए। तो यानी इस सांसारिक जिंदगी को उन्होंने जिया, लेकिन फिर भी वो भगवान क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उसी जिंदगी को जीते हुए जान लिया। और उसको जानने के लिए आपको ये गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। आपको साधु बनना पड़ेगा, ऐसी कतई जरूरत नहीं है। केवल अपनी दृष्टि खुलनी पड़ेगी खुद के प्रति। अभी औरों के प्रति तो दृष्टि खुली है, क्या बनना है इसके लिए हम खुले हैं, जागरूक है मतलब, लेकिन हम क्या हैं इसके लिए हम जागरूक नहीं। देखो दो डायमेंशन है, एक हमें क्या बनना है, तो पूरी दुनिया आपको ये सिखाएगी आपको क्या बनना है। देखो डॉक्टर बनना, सक्सेसफुल बनना, ठीक है। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल? सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या, आप देखो जरा। अगर आप ये सोचते हो बड़ी कोटी बनाने से सक्सेसफुल हो जाता है, उस आदमी को अंदर उनमें जाके पूछो, भाई साहब कैसे हो, वो कहेगा अभी संतुष्ट नहीं, अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं, अभी तक गोल अचीव नहीं किया। अरे ऐसा क्यों, 10 करोड़ हो गया ना? बोले 100 करोड़ होना है। अच्छा जब 100 करोड़ हो जाएगा तब पूछना ना, तो कहेगा मुझसे आगे अभी वो बैठा है। और इस लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमसे आगे कोई ना हो, कभी नहीं होने वाला। और कभी ये भी नहीं होने वाला कि तुमसे पीछे कोई ना हो, ऑलवेज आगे भी रहने वाले लोग होंगे, पीछे भी रहने वाले लोग होंगे। लेकिन हर आदमी को क्या लगेगा, कुछ तो और पाना है, और ये कुछ तो और पाना है ये चाहत में, कुछ पाने की चाहत में हम में से हर आदमी कुछ करने को दौड़ता है। कुछ पाने की चाहत में हम में से हर आदमी कुछ करने को दौड़ता है, और हमारी पूरी जिंदगी करना और पाना बस इन दो शब्दों में निहित हो जाती है। कुछ तो भी करना है और कुछ तो भी पाना है। अच्छा चलो, जिसने बहुत कर लिया, जिसने बहुत पा लिया, उन सबका इंटरव्यू तो लो, कभी लो ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, और अब हैरान हो गए कि वो लोग भी मरते समय तक शांत नहीं हो पाए थे। मरने पर तो शांत हो गए है ना, जब कोई मर जाता है तो यही कहते हैं ना, वो शांत हो गया, लेकिन मरते समय तक वो कभी शांत नहीं हो पाए। ऑलवेज उनके भीतर में तनाव बना रहा, आवेग बना रहा, कुछ तो और करना है, कुछ तो और पाना है, असंतुष्टि बनी रही। इसका मतलब है वो हमारी लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता, जहां जाकर के हमें जिसको लगता है कि ये सफलता है, हमें कुछ दूसरों को देख के लगता है ये सफलता है, लेकिन उस आदमी को खुद को जाके पूछो ना, उसके लिए सफलता का पैमाना कुछ और है। क्योंकि आदमी को जो भी मिलता है, मिल गया, वैल्यू खत्म, नहीं मिला। और ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा उसको पता आएगा जिसने लव मैरिज की, उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जब तक नहीं मिला था कितने पापड़ बेलने पड़े थे, और तब उस चीज की क्या इम्पोर्टेंस थी, और जैसे मिला, अच्छा उस इतनी बात थी क्या। सच में किसी आदमी ने लिखा है कि लैला मजनू की कहानी इसलिए गाई जाती है क्योंकि वो कभी शादी नहीं की है, अगर शादी कर ली होते तो आज इन उनका नाम कोई नहीं जानता क्या, जरा सोचो ना। सारे वही नाम फेमस हुए हैं जो कहानी अपनी परिणति पर पहुंची नहीं थी, पहुंच चुकी होती तो खत्म, डिफेंड हो जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। मैं जानती हूँ जिस बहन ने क्वेश्चन किया है उसका क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था, वो चाह रही थी शायद कुछ पैसा कमाना, शायद कुछ पाना, कुछ पाने के अर्थों तक था, पर मैं चाह रही उसके गहरे तक जाओ, हम सब पा लेंगे उसके बाद भी क्या। और मैं ये नहीं कह रही पाना मत, पाना बनने की एक डायमेंशन है जिसमें कुछ बनना होता है, और एक डायमेंशन है जिसमें कुछ बनना नहीं होता है, खुद को जीना होता है ना। बनने की डेफिनेशन में आपको परमानेंट खुशियां कभी नहीं मिलेगी, वहां कंपटीशन कभी खत्म नहीं होंगे, वहां कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। फिर खुद को जीने की अवस्था है ना, वो एक और डायमेंशन है। उस डायमेंशन में अगर तुम्हारी आंख खुली तो तुम्हें पता लगेगा कि बुदबुदा फना हुआ तो सागर हो गया। तो एक्चुअल हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, वो पूरे लोक जितना है, पूरे यूनिवर्स जितना है, पूरे ब्रह्मांड जितना है। और अगर हम जानते हैं, कब जानते हैं, कैसे जानते हैं, उसको जानने की टेक्निक कि वो है क्या, थोड़ी देर के लिए जब रेस्ट लेते हो, दो कामों के बीच में रेस्ट लेते हो ना, उस रेस्ट के क्षणों में प्रॉपर रेस्ट लेना सीखो। ले पाते हो क्या? नहीं ना। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो हम सारे लोगों को, मतलब वी ऑल यंगस्टर्स, हम सब लोगों को जो सबसे ज्यादा सीखने योग्य चीज है ना, वह है आर्ट ऑफ रेस्ट। आर्ट ऑफ रेस्ट, क्योंकि करना 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 तो सबको सिखाया जा रहा है। इतना ज्यादा दौड़ना सिखाया जा रहा है कि बच्चा उस दौड़ में ही बूढ़ा होने लग गया, उसका बचपना खत्म हो गया। यंग, उसके चेहरे पर जो तेजस्विता आनी चाहिए, जो प्रफुल्लता आनी चाहिए, जो एक म्यूजिक रहना चाहिए, वो है क्या? देखो, हम सब इतने सारे लोगों के चेहरे सामने पड़े हैं, हमारे चेहरे पर कोई रिदम, कोई म्यूजिक, कोई शांति, कोई प्रफुल्लता है नहीं? क्यों नहीं है? जीवन का सौंदर्य कहाँ है? है क्या? नकली सौंदर्य तो ये लोग कर लेते हैं। एक्चुअल सौंदर्य क्या है? ना बच्चों के चेहरे पे, ना जवानों के, ना बूढ़ों के। तो हमें जो सीखने वाली चीज है ना, वो आर्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट सीखो। वो रेस्ट क्या है? रेस्ट मीन्स कि जब आप कुछ करने के लिए, कुछ करवाने के लिए, और कौन क्या कर रहा है इसकी ताक जाक में हो ही नहीं, इन तीनों से मुक्त होकर के मात्र पल में हो, शांति से बैठे और खुद को महसूस कर रहे होते। कुछ क्षण जब हम शांति से कल खुद को महसूस कर रहे होते, ना कुछ करने की सोचे फ्यूचर को लेकर के, ना दूसरों को क्या करवाना उसके लिए कोई ताने बाने बन रहे, और ना कौन क्या कर रहा है इस बात की ताकजाक में हम हैं, हम मात्र शांत होके हैं। ऐसा होता है क्या? सोचो ना कभी कोई टाइम, होता है? नहीं होता ना। ये कला सीखने की, तो जो विराट गुरु जी एनलाइटेड आदमी थे, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, बोध दिया, उन्होंने एक बात सिखाई कि कैसे सारे काम करते हुए हम विश्राम में रह सके, विश्राम की कला कैसे होती है। और हम हैरान होते थे कि हम पांच साध्वी जी और वो एक गुरु जी, हम पांचों से ज्यादा काम वो कर रहे हैं। और मैं जब कहती कि गुरु जी आप इतना कैसे कर लेते हो, अरे मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो बैठा हूं, काम खुद ब खुद हो रहे हैं। ये कला हमें सीखी, ये काम हो हम करें ना, होता है क्या? हो सकता है। देखो कई लोग, अपन सब भी करते हैं ऐसे, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो काम होते हैं हम करते नहीं है। जैसे कि गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चल रही है, आप मस्ती में हो, साइकिल स्टार्ट की चलाना सीखना स्टार्ट किया था, हम साइकिल चला रहे थे, और जब साइकिल चलाना सीख चुके उसके बाद साइकिल चलती है और हम गीत गुनगुना सकते है ना। जैसे वो एक तरीका है, ऐसे ही उससे और बेटर वे है कि काम होते जाए और हमारे अंदर कुछ करने का तनाव ना आए। अगर वो कला आ गई तो हम इस जिंदगी में सफल है, अन्यथा हमने जो कुछ भी अचीवमेंट्स करेंगे ना, उसके बाद पता लगेगा कि अचीवमेंट्स तो बहुत कुछ हो गई, खुद को खो दिया, अचीवर गायब, अचीवमेंट्स बहुत है। एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है, अचीवमेंट्स बहुत हो रही है, बट जो अचीवर के अंदर की जो आनंद होना चाहिए ना, वो उस अचीवमेंट्स तक पहुंचते पहुंचते वो आदमी खुद को खो चुका होता है, खुद की शक्तियां, खुद का आनंद, खुद की शांति, और न जाने कितनी चीजें उसके भीतर से जा चुकी होती है। जैसे पैसे के लिए इतनी मेहनत की कि स्वास्थ्य गया, और जब पैसा आ गया तो उस पैसे का प्रयोग उस स्वास्थ्य को लाने के लिए ऐसे ही हो रहा है। ज्यादा बड़े लोग ज्यादा बीमार, ज्यादा डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और उनके पास ज्यादा पैसा है तो डॉक्टर को ज्यादा पैसा देकर के आते, ऐसे ही तो हो रहा है। तो कई बार नहीं लगता कि शायद इतने सारे अमीर, इतना सारा पैसा उन्होंने डॉक्टरों के लिए कमाया था? हाँ, या तो डॉक्टरों के लिए कमाया था, या इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए कमाया था, या वकीलों के लिए कमाया था। नहीं, दिन रात कोर्ट केस चलते रहते हैं। तो अगर वो वाली सक्सेस चाहिए, वो वाला पर्पस सॉल्व करना लाइफ का, तो वो देख लो हजारों लोग, ऐसे तो कोई कमी नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, क्योंकि वो सब दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं पहुंचना कहाँ है। एक आदमी के मन में सुबह सुबह विचार आया, उसने उगते हुए सूरज को देखा तो दिल इतना खुशी से भरा, उसको लगा मैं जाऊं और सूरज को पकड़ लूं। यही तो है सूरज, क्योंकि जब उग रहा होता है तो कैसा लगता है ना, एकदम करीब है। नहीं, अगर हम किसी पहाड़ी के पास रहते हो तो हमें से लगेगा ये तो पहाड़ी के ऊपर ही है। नहीं, पहाड़ी के ऊपर से तो उग रहा है। तो उस आदमी को लगा मैं जाऊं और इस सूरज को पकड़ लूं। वो भागा सूरज को पकड़ने के लिए पूर्व दिशा में, जहां सूरज दिख रहा था। वो पूरे दिन भागता रहा और सूरज उसके सूरज उसके पीछे था, पूरे दिन भागता रहा और एक लास्ट वो थक के गिर गया, है ना। यही स्थिति हम सबकी होती है। हमारे पापा को देखो, दादा को देखो, उन्होंने जिंदगी भर भाग दौड़ की, इतना कुछ कमाया, और उसके बाद में पता लगा कि जिसके लिए कमाया था, जो कुछ पाने के लिए कमाया था। हाँ, बॉम्बे में हम एक घर में रहे, बांद्रा के अंदर, तो वो घर वाले बोल रहे थे भाई साहब, तो हमारा साहब पहले घर में 15 लोग थे, तो मेरे पास एक कमरे का घर था, आज मेरे पास 4 कमरे का घर है। बांद्रा में अगर 4 कमरे का घर होना बहुत बड़ी बात है, 4 कमरे का घर है, मेरे दोनों बेटे बाहर है, मेरे ये बाहर वो बाहर, अकेले मैं, पति पत्नी दोनों ही रह गए। मैंने कहा दिस इज द लाइफ स्टोरी, सबके साथ यही होने वाला है, जिसके लिए करोगे बाद में पता लगेगा वो सब गायब है ना। तो वो एक डायमेंशन है पर्पस को ढूंढने का, वहां पर पर्पस नहीं मिलेगा, वहां पर जो मिलेगा वो अपने से बड़ों को सारी लाइफ स्टोरी को देख करके, उनके कंक्लूजन को समझ करके हम सीख सकते हैं, है ना। दूसरी एक और डायमेंशन है, जिस डायमेंशन पे बहुत थोड़े लोग जा पाते हैं, लेकिन आप सब लोग लक्की हो कि आपको इस टाइम में उस डायमेंशन के बारे में पता तो लग रहा है, वरना कितनी दुनिया जिसको पता भी नहीं कि एक्चुअल जिंदगी का पर्पस क्या है। एक्चुअल जिंदगी का पर्पस है खुद को जीना, खुद को जीना और वास्तविक अर्थों में जीना, अपने स्वरूप को जीना। और अपने स्वरूप को जीने का तरीका यह है कि आप आर्ट ऑफ रेस्ट सीखो, विश्राम की कला सीखो। उन विश्राम के क्षणों में आप खुद के पास आओगे, और जब आप जितने क्षणों में खुद के पास रहोगे, उन क्षणों के अंदर आप और पूरी प्रकृति अट्यून हो पाओगे, एक हार्मनी में आ पाओगे। जब हम पूरे नेचर के साथ हार्मनी में होते हैं ना, तब हम नेचर में होते हैं, और जब हम नेचर में होते हैं तब हम स्वभाव में होते हैं, जब हम स्वभाव में होते हैं तब हम धर्ममय होते हैं, जब हम धर्ममय होते हैं तब हम एक्चुअली अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। वो जीना है स्वाभाविक जीना, जब मैं और पूरी प्रकृति एक हो, है ऐसी स्थिति आ जाए, उस समय में मैं डिसॉल्व हो जाता है, मैं नहीं रहता। तो मैं नहीं रहता तो क्या बचता है, पूरा अस्तित्व और हम एक ही होते हैं, तो हम होता है ना। तो मैं से हम हो जाना, अहम हट जाना, अरहम हो जाना, वाकई यह है जिंदगी का मकसद, है ना। और तुम जो कहना चाह रही हो कि हम मकसद भूल जाते हैं, वो सब क्यों भूल जाते हो, किस लिए भूल जाते हो, तुम्हारे क्वेश्चन पूछने का जो रीजन था वो ये था कि मैं पर्पस पे साथ चलती हूँ, लेकिन उसके बाद पर्पस खो जाता है। क्यों खो जाता है, क्योंकि दिमाग का एक नियम है कि वो तनाव को बहुत ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता है, उसके बाद में वो तनाव का बोझ छोड़ देगा। और जैसे ही आप पर्पस फ्यूचर में बनाते हो, क्योंकि पर्पस कब बनाते हो, किस पर्पस बनाने का मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड, ऐसे है ना, गोल बनाने का मतलब क्या, फ्यूचर। जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड आप गोल बनाते हो तो आपका मन फ्यूचर के साथ एक कनेक्शन बना लेता है। नहीं, जैसे अपने खूटी के अंदर कुछ टांग दिया, कई लोग थे पुराने जमाने, आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद की स्टोरी में भी आता है कि उनको रात को पढ़ाई करनी होती थी और बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती थी, अगले दिन एग्जाम देना है और रात को नींद ना आ जाए, तो वो क्या करते थे कि अपने ही पीछे से एक रस्सी को उधर टांग देते थे, कि जैसी नींद आएगी उससे नीचे जाएगा तो वो रस्सी मुझे खींच लेगी, है ना। तो क्या होता है कि ठीक ऐसे ही हम सब लोगों ने अपने आप को एक लक्ष्य के साथ बांधा, तो एक खूंटी में अपने को टांग दिया। अब क्या होगा, कब तक टंगे रहोगे बाबा, आखिर तो थक जाओगे। जब थक जाओगे तो खुद ही छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। भविष्य के साथ बंद करके दिन भर जिया नहीं जा सकता। भविष्य की सोच दिमाग में 2400 घंटे नहीं पाली जा सकती, पर हम पालते। हम में से हर आदमी लगातार खुद को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। दिस इज आवर न्यू जनरेशन, और उसको ये जो नई शिक्षा मिली है, वो पूरी शिक्षा पूरी प्रेरणा ये है कि अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश लगातार करते रहो, चूको मत। नहीं, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा। हर आदमी कह रहा है भागो, कुछ करके दिखाओ, कुछ दौड़ो, कुछ सपने देखो, कुछ बड़े लक्ष्य की कल्पना करो और कल्पनाओं के अंदर जियो। कहां ले जाया जा रहा है? हर एक आदमी को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में इतना ज्यादा हैबिचुअल बना दिया गया है कि वो दिन रात वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, नहीं है क्या? और इतनी सारी इमेजेस हमने चारों ओर लेकर के बैठे। जरा एक कल्पना करो, अगर वो सारी इमेजेस को आपके घर के दीवारों के ऊपर चिपका दिया जाए और आपको उसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, कितनी देर तक जी सकोगे? एक भी रियल आदमी देखने को ना मिले और पूरे इमेजेस पूरे कमरे के अंदर चिपका दी जाए दीवारों पर और आपको उस कमरे में कैद कर दिया जाए, कितनी देर तक जी पाओगे? लेकिन वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू लिव लाइक दिस। इसीलिए एक टाइम आता है जब हम सब छोड़ देते तो हमें लगता है तो पर्पस ही भूल गया जिंदगी का। वो क्षण बहुत अच्छा था जब आप पर्पस भूल गए और क्षणों में आप वर्तमान में आए, और जब वर्तमान में आए तो आपको पता लगा ये गोल, ये पर्पस, ये सब भी कितनी आदर्श बात है, कितनी आइडियोलॉजी है, नहीं कितने आइडियल स्टेटमेंट्स है। जरा सोचो 50 करोड़, वो 50 करोड़ को सोच सोच करके इस समय कितने दुबले हो रहे हो, नहीं? लेकिन ऐसे ही चलाया जा रहा है और इतनी ज्यादा वो बातें सुनने को मिलती है ना, तो आदमी को उसमें बातें सच लगती। बहुत लोग कहते हैं महाराज साहब सपने तो बड़े देखने ही चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछो, तुमने सपना देखा था क्या कि तुम भारत के प्रधानमंत्री बनोगे? देखा था क्या? APJ अब्दुल कलाम जी से जाके पूछो, तो पूछने मुश्किल है शायद। जिन्होंने ये कहा था कि सबको सपना देखो, उन्होंने सपना देखा था क्या वो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे? नहीं देखा था। तो क्या किया था उन्होंने? उन्होंने उस सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए किया क्या था? डू यू नो? नहीं ना, मैं बताती हूँ क्या किया। ये सीक्रेट है, ऐसे शेयर कर दू? हाँ चलेगा, बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत इजीली शेयर करने जा रही है, उसकी वैल्यू समझना। उन सफल व्यक्तियों ने कभी भी सफल होने का प्रयास नहीं किया था, उन्होंने एक ही प्रयास किया था, खुद को योग्य बनाने का। एक ही प्रयास था, हर हाल में खुद को लायक बनाते गए, खुद को योग्य बनाते गए, हर चैलेंजेस के साथ वो ग्रो करते गए, वो सफलता के शिखर तक पहुंच गए। तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? डोंट ट्राई टू बी सक्सेसफुल पर्सन, डोंट ट्राई। तो क्या ट्राई करना? ट्राई टू बी अनेबल, केवल योग्य होने की कोशिश करो। पूज्य विराट गुरु जी की पूरी किताब है सफलता का एकमात्र सूत्र, और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि सफलता का सूत्र क्या है कि सफल होने की कोशिश मत करो, केवल योग्य होने का पुरुषार्थ करो। आप योग्य बनते जाओ, काबिल बनते जाओ, अपनी काबिलियत को निखारते जाओ, अपनी योग्यताओं को कुशलता देते जाओ, आप सफल हो जाओ। बस तो आप कह रहे मैं पर्पस भूल जाती हूँ, मैं कहती बहुत अच्छे क्षण है वो जब आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अपने पर्पस भूल जाती हो, तो तुम्हारे क्योंकि तुम्हारे गोल फ्यूचर ओरिएंटेड है और फ्यूचर भार है, इस चित्त पर दो ही तो भार है, हमारे इस चित्त पर यानी मन पर दो ही सबसे बड़े भार है, पता है कौन से? जरा सोचो तो सही, एकदम से ना मत बोलो नहीं पता है, थोड़ा दिमाग लगा। हमारे मन पर, हमारे इस चित्त पर दो सबसे बड़े भार है, एक है भविष्य और एक है भूत। नहीं देखो, मन भारी कब होता है? जब किसी यादों में खोता है। जब किसी की यादों में खोता है तो मन भारी, उदास, हैप्पीनेस गायब है। और मन भारी कब होता है? जब भविष्य की कल्पनाओं में यात्रा करता है। थोड़ी देर तक तो ठीक है, उसके बाद में तो बहुत भारी हो जाता है। फिर एक लास्ट उसमें भार को उतारने के लिए सो जाते हैं। इसीलिए सोते हैं तो थोड़ी रेस्ट मिलती है, इसके सिवाय तो मन पूरी टाइम पास्ट और फ्यूचर की दौड़ में दौड़ता ही चला जाता है ना। अब सोने मात्र से तो सफलता हासिल होगी नहीं, तो हमें बिना सोए वो रेस्ट कैसे लानी, कैसे पानी, कैसे जीनी कि जब पास्ट और फ्यूचर का भार ना रहे, वो कला आर्ट ऑफ रेस्ट है ना। और वो कला ही मेडिटेशन, जिसको दुनिया मेडिटेशन कह रही है, एक्चुअली वो आर्ट ऑफ रेस्ट है। उस मेडिटेशन में क्या होता है? कुछ करना नहीं होता, केवल खुद को जीना होता है। आपको पता है ये खुद को जीना, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, इसके पीछे आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है, कुछ पिक्चर बन रही है, खुद को जीना, ये क्या है खुद को जीना? हाँ नहीं पता ना, नहीं पता हमको, भाई हमें पता नहीं, हमें लगता है मैं खुद को ही तो जी रहा हूँ। नहीं, हम खुद को नहीं जी रहे हैं, हम सब इम्प्रेशंस को जी रहे हैं। किसको जी रहे? इम्प्रेशंस को जी रहे हैं। अच्छे इम्प्रेशन, बुरे इम्प्रेशन है, सारे इम्प्रेशन। खुद को जीना हा? अपने मन जैसे जीना नहीं है। जिसमें अपने को खुशी मिले वो करना, ये भी खुद को जीना नहीं है, क्योंकि वो जिसमें अपने को खुशी मिली है ना, वो आप करते हो ना। अब देखो वो सारी क्रियाएं जो भी की जा रही है, चाहे वो खुशियों के लिए की जा रही है, अगर वो थोड़ी ज्यादा हो जाए तो तनाव और दुख बन जाएगी। नहीं, काजू की बर्फी बहुत पसंद है, किस किस को? सबको पसंद है ना। चार खाओ तो बहुत अच्छा, आठ खाओ तो बहुत बहुत अच्छा, या बहुत थोड़ा कम अच्छा? हाँ, किसी किसी के लिए बहुत बहुत अच्छा। ओके चलो, 16 खाओ तो 32 एक साथ खाने को भी दे दी जाए तो जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा, फिर क्या होगा? अब अच्छा नहीं है, है ना। तो हमेशा लगता है खुद को जीना, हम समझ गए कि हम अपने को जो खुश मिले वो कार्य करो, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं करने पर खुद को जीना संभव हो सकता है। खुद को जीना कब? जो भीतर में कुछ करने का तनाव ही ना हो। तो क्या आप बैठे हो और आप अपने आप के साथ हो? वो क्षण लाओ अपने जीवन में, जागते हुए वो क्षण लाओ कि बैठे हैं और खुद के साथ है, खुद में रिदमिक है, खुद में संगीतमय है। और जब खुद के भीतर के संगीत को अगर सुन पाओ, महसूस कर पाओ ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि सच्ची खुशी क्या है, सच्ची सफलता क्या है। वो खुशियां जो दूसरों पे डिपेंडेंट है वो सच्ची खुशियां नहीं होती। वो सफलताएं जो किसी अचीवमेंट्स पे डिपेंडेंट है वो सच्ची सफलताएं नहीं होती, क्योंकि जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं, ऑल अचीवमेंट्स आर टेम्परेरी टेम्परेरी टेम्परेरी। ऑल अचीवमेंट्स परमानेंट हो ही नहीं सकते, हो सकते ये? नहीं ना। सीएम की कुर्सी भी परमानेंट नहीं है ना। ऑल अचीवमेंट्स आर टेम्परेरी। इसीलिए एक्चुअल सफलता, एक्चुअल खुशियों की परिभाषा जान के फिर इस टेम्परेरी जिंदगी को जियो, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि वास्तविक सत्य क्या है और ये चेंजेबल सत्य क्या है। जो इटर्नल ट्रुथ है वह यह है कि तुम ही अस्तित्व हो, हम ही ब्रह्मांड है। हमारा वास्तविक स्वरूप पूरा समुद्र, पूरा विश्व, हम विश्व है। ये हमारा इटर्नल ट्रुथ है, ये हमारा वास्तविक अस्तित्व है। और अब टेम्परेरी क्या है कि हम इस बॉडी में हैं, तो अब हमारे इस बॉडी के साथ जो जर्नी है वो जर्नी सुखद हो सके उसका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला कि जो अपने लिए सुख चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू करो, सुखी हो जाओ। बस तुम्हें मुस्कुराहट पानी अच्छी लगती है, मुस्कुराहट पानी अच्छी लगती है, मुस्कुराहट देना सीखो। ऐसे ही है ना? और क्या अच्छा लगता है? मुझे कोई प्यार करे, ये अच्छा लगता है। मुझे कोई प्यार करे, आपके सामने जो भी आता है सबको प्यार दो ना, अनकंडीशनल प्यार मिले। और क्या अच्छा लगता है? जहां जाओ रेस्पेक्ट मिले, ये अच्छा लगता है ना? तो क्या करना, जब जहां जाओ रेस्पेक्ट दो। दे सकते हैं? नहीं दे सकते क्या? दे सकते, कितना सरल सा सूत्र है। इस टेम्परेरी लाइफ के अंदर में अगर सदा खुशियां चाहिए, जो आप प्रश्न कर रही थी कि परमानेंट कैसे हो सकती है खुशियां, तो उपाय है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो। देना है पाने का राज, ठीक है? देना है पाने का राज, मिल गया ना सबको राज। तो आप सब सदा खुश रहो, ये राज जो मिला है, इस बात को अभी एक बार सुनाओ, इसी बात को आप वापस कितनी बार खुद को सुनाओगे, इन्हीं सारी बातों को खुद को कितनी बार वापस सुनाओगे, बहुत जरूरत पड़ेगी है? अगर जरूरत पड़े तो बहुत बार सुना लेना, और अगर एक ही बार में जैसे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ऐसी एक ही बार में समझ में आ गया तो दी बेस्ट। इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं। एक ही बार में समझ में आ गया कि एक्चुअल खुशियां क्या है, एक्चुअल सफलता क्या है, और इस परमानेंट सफलता के साथ साथ इस टेम्परेरी सफलता को पाने का सीक्रेट क्या है, अगर दोनों ही तरह का पर्पस और सफलता समझ में आ गई तो बेस्ट। जय हो।